ओम शांति। आज का विषय, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का विषय क्या है? सच्चे दिल साफ दिल। हम सभी जानते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी गीत में भी था ना अभी, तो हम आप इसी बात पर हम आपसे लगभग अगले 45 मिनट आपसे चर्चा करेंगे इस पे, कैसे हमारे दिल सच्चे दिल बने, साफ दिल कैसे बन जाए। और वो साहब शिव बाबा हम सभी का पिता, हम सभी का कौन सा बाबा? प्यारा बाबा, मीठा बाबा, है ना? वो कैसे हमारे ऊपर राजी रहे, सदा राजी रहे। और वो राजी रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा फिर? ऑटोमेटिक हम क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। फिर ऑटोमेटिक अभी हमारा जो संगम का युग है उसमें हम बाप के साथ मौज बना सकेंगे, अपार खुशी में रह सकेंगे। जो आज बाबा ने कहा ना, आज की मुरली का पॉइंट याद है, मीठे बच्चे। हम बाबा के साथ, अगर हर पल बाबा हमारे साथ रहे तो क्या होगा, हम अपार खुशी में रहेंगे ना, अपार नशे में रहेंगे ना, अपार खुशी का नशा चढ़ा रहेगा। तो ऐसी स्थिति फिर हमारी बन जाएगी और हम हमारे सारे विक्रम विनाश होकर के हम क्या बन जाएंगे, पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे। तो आज इसी बात को हम बहुत ही गहराई से, ज्ञान की गहराई में जाके बाबा की डिफरेंट डिफरेंट मुरलियों से इस बात को उठा करके, और कैसे ये चीज हमारे जीवन में हमें समझ भी आ जाए और कैसे प्रैक्टिकल हमारे जीवन में ये बात आ जाए, है ना? ऐसे क्लास कराने की बात नहीं है, पर वो जीवन में अगर हमारे बात आए तभी तो हम सफलता है ना। खाली क्लास सुनने से तो फायदा कुछ नहीं है, क्या? सुनते तो हम बहुत सारी बातें हैं, है ना, कि तो फायदा तब जब हमारे जीवन में हम उसको प्रयोग कर सके और हमारे जीवन का अंग बन सके। ठीक है, चलिए इसके लिए हम 2 मिनट फिर दोबारा से व्हाइट लाइट में ही अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। मैं आत्मा, मैं स्थूल देह नहीं, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा यहां पर चमक रही हूं, यहां से 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, और मुझे आत्मा से 7 जो गुण है ना, आत्मा के 7 गुण, वो 7 गुण सारे शरीर रोम रोम में जा रहे हैं यहां से, ऐसा फील करें। और शिव बाबा हमसे कितने दूर है, शिव बाबा कितने दूर है हमसे, कितने किलोमीटर? परमधाम में है ना, परमधाम कितने दूर है यहां से, कितने दूर है? कोई माप नहीं, ऐसे तो किलोमीटर में माइल्स में तो माप नहीं है, किंतु कितने दूर है? मंगल ग्रह पे जाने पे हमको 1 साल लगा है ना, वो गया ना, रॉकेट गया था ना, 1 साल लगा उस पे पहुंचने में। और परमधाम जाने में कितनी देर लगती है? 1 सेकंड। तो एक सोच की दूरी पर है, है ना, सोचा और पहुंचे, नहीं ऐसा नहीं। जैसे आप लोग कहां से आए, कर्नाटक से आए ना, मैसूर से आए या जहां से भी आए हैं ना आप, तो अपने घर पहुंच सकते हैं आप, यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हैं, अपने अपने ड्राइंग रूम में पहुंच सकते हैं आप, अपने घर के ड्राइंग रूम में पहुंच सकते हैं, यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हैं ना, 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं ना, यहां से सोचा और एकदम ऐसा लगेगा हम ड्राइंग रूम में पहुंच गए। कौन सी चीज कहां रखी है, दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी, दिखाई देगी कि नहीं दिखाई, दिखाई देगी ना। ऐसे ही हमारा बाबा परमधाम में बैठा है, तो परमधाम में हम 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं, राइट? तो बाबा परमधाम में है, शिव बाबा 7 गुणों का सागर है। नहीं आ रही है ट्रांसलेशन, नहीं आ रही है, आ रही है ट्रांसलेशन? अच्छा, वेरी गुड। नहीं आ रही है, आ रही है, ओके फाइन। तो बाबा जो है कौन है, 7 गुणों का सागर है, 7 एनर्जी कहो, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर है। तो जैसे मैं आत्मा 7 गुणों का स्वरूप हूं, परमात्मा 7 गुणों का सागर है, तो उससे वो शक्तियां मुझ में आ रही हैं और मुझसे होती सारे शरीर में जा रही है। तो सच्ची दिल साफ दिल, सबसे पहले तो हम समझे सच्ची दिल किसे कहते हैं। उससे भी पहले आपको ये शायद याद होगा, अभी 3 दिन पहले मुरली चली थी बाबा की, याद है 27 तारीख कौन सी मुरली चली थी? मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चा रहो, सच्चा रहो ना, ऐसा था ना, सच्चाई का चार्ट रखो, जब मैंने ये मुरली सुनी 27 तारीख को 3 दिन पहले, तो मेरा इस पे मनन चिंतन मंथन मैंने किया मुरली के ऊपर, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सच्चा बाप कौन और सच्चे रहने का मतलब क्या है ना, और सच्चाई का चार्ट क्या रखना है ना। क्योंकि बाबा की एक बात आप समझे हमेशा कि जो बाबा का ज्ञान है, शिव बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया, इस ज्ञान में 3 विशेषताएं हैं। ज्ञान का एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु या एक एक रतन बहुत ही गुह्य है। गुह्य माना डीप, गहराई है उसमें। दूसरा गोपनीय है, गोपनीय माना अगर कोई मुरली लेके पढ़े ये वाली मुरली तो समझ में आएगी उसको। कोई दुनियावी आदमी जिसने ज्ञान का कोर्स ना किया हो वो समझ में आएगी उसको क्या पढ़ रहा है वो, उसकी बुद्धि में जाएगा कुछ भी? गोपनीय है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। बाबा क्या कहना चाहता है समझ नहीं आएगा ना। डीप मीनिंग तो पता ही लगेगा। तो गुह्य है, गोपनीय है और रहस्य युक्त है। रहस्य, बहुत रहस्य समाये, एक एक लाइन में बहुत बहुत रहस्य समाये हुए। इसलिए ज्ञान की गहराई में जाना, जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे जो एक तो होता है साधारण पुरुषार्थी, एक होता है तीव्र पुरुषार्थी, एक होते हैं 108 की माला में आने वाले है ना, और एक होते हैं प्रजा में जाने वाले। क्या फर्क है दोनों में, क्या फर्क है? जो साधारण पुरुषार्थ करते हैं, रोज उठे, अमृत वेला किया, मुरली सुनी, उसके बाद 7 दिन पे काम में लग गए, शाम को फिर बाबा को सोने के पहले बाबा याद आया, गुड नाइट कर ली, ये क्या हुआ? मोटा मोटा पुरुषार्थ कर लिया ना। तो ये साधारण पुरुषार्थ, ये कहां जाएंगे, इनका क्या पुरुषार्थ होगा? प्रजा में जाएंगे ना। नहीं, उन्होंने बाबा की जो श्रीमत थी 7 दिन में फॉलो नहीं की। बाबा ने सुबह क्या कहा वो 7 दिन अटेंशन नहीं रखा, ये साधारण पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी जो बाबा ने कहा सुबह, वो सारा दिन बाबा को हमें याद रहा कि बाबा ने कहा था बच्चे मीठा बोलना, कभी किसी से क्रोध नहीं करना। आज के मुरली में था ना, क्रोध नहीं करना है ना, बाबा ने कहा ना आज। निश्चय बुद्धि कैसे, निश्चय माना क्या, हमें बाप पढ़ा रहा है, हम बाप के सम्मुख बैठे हैं ना, बाप से हमको रूहानी ताकत मिल रही है ना। वो फीलिंग लगातार रहे, निरंतर रहे, उस पर अटेंशन रहे। अमृत वेला भी किया, अमृत वेला बाबा की गोद में बैठ के किया, मुरली भी बाबा की गोद में बैठ के सुनी, और फिर मुरली अंदर बजती रहे सारा दिन। सारा दिन उसमें मनन चिंतन मंथन और सिमरन चलता रहे, और फिर सोने के पहले एक लेटर लिख के बाबा को सारा पोता मेल दें, सारा हिसाब किताब, बाबा आज सुबह से ये हमने किया, इतना देर याद रही, इतना देर नहीं रही, इतनी देर मन में ये विचार चले, वो पूरा का पूरा हिसाब किताब बाबा को, अच्छा और बुरा सब कुछ लिख के दें, फिर चार्ट भरें याद का, फिर मुरली पढ़ें, और फिर बाबा को याद करके बाबा की गोद में सो जाए, है ना। ये कैसे पुरुषार्थ हुए? तीव्र पुरुषार्थ। तो ज्ञान की गहराई में जाना, जो ज्ञान की महीनता में जाते हैं, गहराई में जाते हैं और उसको फिर फॉलो करते हैं, उसी हिसाब से योग लगाते हैं, उस ज्ञान को समझ करके फिर गहराई में जाकर के और फिर उसको धारण करते हैं, और धारण करके अनुभव करके फिर दूसरों को अनुभव कराते हैं, वो है महान पुरुषार्थी या तीव्र पुरुषार्थी। ऐसी आत्माएं क्या होती हैं, वो कहां आती हैं? वो विजयमाला का दाना बनती है, राइट। तो ज्ञान की गहराई में जाना अति आवश्यक है। तो मैंने क्या बताया आपको, मुरली का एक एक पॉइंट कैसा है, मुरली है ना, 4 पेज की मुरली सुनी ना आज सुबह, उसमें एक एक पॉइंट, कितने पॉइंट थे उसके अंदर, एक एक महावाक्य। अगर एक एक महावाक्य पे अगर आप मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो, सिमरण करो, तो एक एक महावाक्य गुह्य है, माना बहुत डीप है, बहुत गहराई है उसकी, और बहुत गोपनीय है। गोपनीय है, गोपनीय माना वो सीक्रेट है, जो पवित्र रहेगा, जिसकी बुद्धि पवित्र होगी, जो पवित्रता को धारण करता होगा, मन बुद्धि तन मन धन, मन बुद्धि संस्कार से पवित्र होगा, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक भी पवित्र होगा, जितना अधिक पवित्र होगा उतना उसकी बुद्धि में वो उसका रहस्य उसको समझ, उतना गोपनीयता उसके पीछे सीक्रेट क्या वो समझ में आएगा, उसका रहस्य क्या है वो समझ में आएगा, उतना ज्यादा वो उसकी गुह्यता में गहराई में जा सकेगा। राइट, चार नियम और चार मर्यादाएं हैं ना, सभी को जहां सभी जानते हैं, ब्राह्मण जीवन के चार नियम हैं और चार मर्यादाएं हैं। सच्चा ब्राह्मण कौन, हमने कहा सच्चे दिल साफ दिल, सबसे पहले सच्चा ब्राह्मण कौन, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी भी अमृत वेला मिस ना करे। कितना भी बिजी हो, रात को 12 बजे सोने को मिले तो फिर क्या करने का, सुबह उठने का नहीं उठने का, 4 बजे उठने का, और 2 बजे सोए तो अचानक कोई ऐसा काम आ गया 2 बजे सोए तो फिर क्या करने का, सुबह 6 बजे उठने का, फिर भी 4 बजे उठने का, क्योंकि अमृत वेला कभी मिस ना, सच्चा ब्राह्मण माना जो कभी भी अमृत वेला मिस ना करे, कुछ भी हो जाए, बीमार हो तो तब मिस करने का, तब भी मिस नहीं करने का, है ना, कुछ भी हो, घर में शादी हो किसी की, किसी की मौत हो गई हो तो, शरीर छोड़ा हो तो, अमृत वेला मिस करने का, करने का या नहीं करने का। सच्चा ब्राह्मण, ये चार नियम है ब्राह्मणों के, नियम है कभी भी अमृत वेला मिस ना हो। अमृत वेला खाली नहीं बैठ गए और सो गए, ऐसा नहीं, पावरफुल अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला माना बाबा की गोद का अनुभव, बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा मुझे प्यार कर रहे हैं, बाबा से रू रिहान चल रही है, कभी सूक्ष्म वतन में कभी परमधाम में, कभी परमधाम में कभी सूक्ष्म वतन में, फिर परमधाम में फिर सूक्ष्म वतन में, 45 मिनट यही हमारी स्थिति हो, पावरफुल अमृत वेला सच्चे ब्राह्मण की निशानी है। सच्चा ब्राह्मण वो, दूसरा नियम क्या है, जो कभी मुरली मिस ना करे। मुरली कौन सी, कहां पर, इंटरनेट पे, या पढ़ ले मुरली घर में ही पढ़ लिया, कई लोग ऐसे आजकल बहुत करते हैं ना, मोबाइल पे मुरली आती है ना, मोबाइल पे मुरली पढ़ लेते हैं, चलो मुरली पढ़ हो गया ना, या फोटोकॉपी के घर में ले जाते हैं और घर में 7 दिन में एक बार सेंटर पे जाते हैं, फोटोकॉपी कर घर पे फिर पढ़ते पैदल, नहा धो के पढ़ लिए, 15 मिनट में मुरली हो गई, चलो फिर नाश्ता करके ऑफिस चले गए, दुकान पे चले गए, नहीं करते ना, ऐसे बहुत सारे करते। तो ये मुरली माना, मुरली माना मुरली साथ सम्मुख बैठ के सुनना, क्लास में टीचर के सामने, क्योंकि टीचर के द्वारा जब बाबा, टीचर की कोई भी टीचर हो सामने, कोई भी मुरली सुनाता है, भाई या बहन सुनाते हैं, आपकी टीचर सुनाती है, ब्रह्मा कुमारी बहन सुनाती है, वो टीचर के थ्रू बाबा आपको शक्ति भी दे रहा है धारण कर। खाली मुरली पढ़ने से बात नहीं है, मुरली सुन के हमारे जीवन में धारण भी हो ना, तब तो फायदा है। सुनने से फायदा है क्या खाली, तो मुरली सुन के हमारे जीवन में आ जाए तो वो सच्चा ब्राह्मण है। राइट, अदरवाइज जैसे है, जैसा मान लीजिए आपका एक, आपको लगा, आपने कहा मुझे भूख लगी है, और आपको एक हम फोटोग्राफ दे दें, फोटो एक थाली की फोटोग्राफ, थाली की फोटोग्राफ, थाली में सब कुछ है, सब्जी भी है, दो सब्जी है, ढोकला भी है, है ना, और क्या आप लोग क्या खाते हैं साउथ में, है मसाला डोसा भी है ना, इडली है, वॉट एवर कुछ है, जो भी आप खाते हैं वो सब कुछ बहुत अच्छा रखा है, और आपको लोग खाना खा लो, पेट भर जाएगा आपका फोटो से, भरेगा फोटो से पेट, नहीं भर जाएगा ना। तो हम आपसे बात कर रहे थे, नियमों के ऊपर बात कर रहे थे ना, अमृत वेला मुरली। आज हमने बाबा से ये भी सुना ना, शाम को सुबह सुना ना, कि दिमाग में ताकत आई, दिमाग में इतनी ताकत है कि जो बाबा सुनाता है, ये अंदर नशा है कि मैं बाबा के सम्मुख बैठा हूं, बाबा मुझे सम्मुख सुना रहे हैं, बाबा स्वयं मुझे पढ़ा रहे हैं। कौन सी पढ़ाई, ऊंचे तो ऊंची पढ़ाई है, या पढ़ाई अंदर बैठी, ज्ञान रत्न अंदर बैठे, दिमाग में ना बुद्धि, तो बुद्धि में यह बात बैठी कि नहीं बैठी, तो ये बुद्धि में बात, बुद्धि बुद्धि का मतलब बुद्धि, दिल क्या चीज है बेसिकली, बुद्धि का ही एक एस्पेक्ट है दिल। मैं भी आगे इसमें गहराई में जाएंगे कि दिल एक्चुअली है क्या चीज। बुद्धि की एक 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 एस्पेक्ट मतलब एक समझो उसका एक पार्टी समझो। तो दिल एक्चुअली जो आत्मा के जो वस्त्र है ना, बाबा को धोबी भी कहते हैं ना, बाबा को धोबी कहते हैं ना, तो हमारे आत्मा के वस्त्र कौन से हैं? ये आत्मा के वस्त्र हैं मन बुद्धि और संस्कार। ये हमारे वस्त्र गंदे हो गए उसमें दिल भी आती, बुद्धि को ही एक्चुअली दिल कहते हैं। तो बुद्धि रूपी जो हमारा जो वस्त्र है आत्मा का वो गंदा हो गया, मैला हो गया, मन रूपी वस्त्र गंदा हो गया। और मुरली क्या है? वो साबुन है। तो बाबा कैसे धोते हैं हमारे वस्त्रों को? ये वस्त्रों को नहीं, ये तो बोला धोबी धोता है, या घर में हम खुद धो सकते हैं वॉशिंग मशीन में डाल के। मन को वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं क्या? बुद्धि को डाल नहीं सकते, संस्कार नहीं धो सकते ना। तो मन बुद्धि और संस्कार रूपी जो वस्त्र हैं उनको कैसे धोएंगे हम? तो सच्ची दिल साफ दिल बनेगी। तो ये मुरली ही वो साधन है जिससे हमें क्या होता है, अपने दिल को हम सच्ची दिल और साफ दिल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मुरली जो है जिससे हमें रिकॉर्ड, आप सोचते हैं हमने मुरली तो पढ़ ली, अब मुरली पढ़ ली तो अंदर गई क्या? उसके लिए जो वायुमंडल चाहिए, जो वातावरण चाहिए, वो कहां पर है? आपके घर में है? नहीं है। जहां सेंटर में सारा दिन योग तपस्या चलती है सुबह से लेकर रात तक, जहां भाई बहनों से बातचीत ही सिर्फ योग के बारे में होती है, बाबा के बारे में होती है, वहां पर वो रूहानी वायुमंडल है। वो बाबा की नजर में है वो सेंटर जहां पर क्लास चलती है, तो वहां पर ही जाकर रिकॉर्ड होगी। नहीं, अगर आपको कुछ रिकॉर्ड करना हो तो आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं? अपने अगर आपको मोबाइल में रिकॉर्ड करना हो या आपको अपने किस में रिकॉर्ड करते हैं, कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं ना, कैसे रिकॉर्ड करते हैं? या टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना हो तो एकदम साइलेंस रखते ना, आसपास साइलेंस रहे। नहीं, अगर आसपास आवाज होगी तो साथ में वो आवाज रिकॉर्ड नहीं हो जाएगी। घर में जब आप बैठे हैं तो घर में तरह तरह के विचार चल रहे हैं, बच्चों के विचार अलग चल रहे हैं, आपके युगल के विचार अलग चल रहे हैं, नहीं, आपके माता पिता सास ससुर के विचार अलग चल रहे हैं, तो उन विचारों के ट्रैफिक में क्या होगा जो आपके अंदर रिकॉर्डिंग होगी? क्या रिकॉर्डिंग होगी? नहीं। तो मुरली जो है सबसे इंपॉर्टेंट साधन है अपने दिल को सच्ची और साफ बनाने का, राइट? तो सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी भी मुरली मिस ना करे, क्योंकि रिकॉर्डिंग सुबह होनी है, रिकॉर्डिंग होने के बाद तो मनन चिंतन करेंगे ना उसके बाद में, और रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हुई तो मनन चिंतन होगा क्या? मंथन होगा क्या? नहीं हो सकता ना, है ना? तो मुरली सुनने के भी 6 स्टेप हैं, 6 मतलब मुरली हमारे जीवन का सार बन, हमारे स्वरूप में आ जाए, उसके 6 स्टेप हैं। पहला तो श्रवण हो गया, श्रवण सुनना, हम जहां सुबह सुबह के क्लास में सुनते हैं, फिर श्रवण के बाद मनन करना, मनन के बाद चिंतन करना, फिर मंथन करना, और फिर सिमरण करना, और फिर लास्ट में मुरली हमारे जीवन का, हम उसके स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। मतलब हमारे जीवन का वो हमारे अंदर स्मृति, हमारे मेमोरी में हमारे जीवन का पार्ट बन जाती है। फिर 10 दिन पहले वाली मुरली, बाबा ने उस दिन वो कहा था, बाबा का वरदान वो था, मुझे वैसा बनना है, फिर वैसा हम बनते हैं, है ना? तो पहला तो हम सुने ऐसा बिल्कुल बाबा की गोद में, जैसे बाबा के यहां पर आके बैठते हैं ना हम लोग, क्लास में आके बैठते हैं तो कैसे सुनते हैं? बाबा कहता है सूक्ष्म वतन में मेरे पास आ जाओ 1 सेकंड में। कितने दूर है सूक्ष्म वतन? कितने दूर है? एक सोचे और पहुंचे, बाबा की गोद में पहुंच सकते ना एकदम से। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट बाबा ने हमको दी है सभी को, उस बुद्धि रूपी लिफ्ट में बैठे और बाबा की गोद में पहुंच गए, और बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुने, तो तब बाबा की मुरली रिकॉर्ड होती है। सुनते जाए, बाबा सुना रहा है, हम नोट भी करते जाए, बुद्धि में एक भी विचार इधर उधर ना आए, कहीं का ना आए, दूसरा विचार आया तो क्या होगा? रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। फिर मनन माना, उसको रिवाइज करो, मुरली सुन के गए ना है, तो नोट करके ले गए, या मुरली की फोटोकॉपी आपके हाथ में है तो उसको रिवाइज, बाबा ने आज क्या कहा। वॉकिंग करते करते 45 मिनट 30 मिनट जब वॉकिंग करते हैं, मुरली के एक पॉइंट की चिंतन करो, मनन करो, रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद वापस लाए ना, इससे जुगाली करती गाय, फिर चिंतन माना चिंता लगाओ, चिंतन माना एक चिंता होती है जिससे जो खराब चिंता होती है, बच्चे की चिंता कर रहे हो, उसका एग्जाम, कमाने की चिंता कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान, घर में इतना काम कैसे होगा, बच्चे कैसे हो गए, खर्चा कैसे चलेगा, ये तो चिंता हो गई, दुनियावी चिंता। चिंतन माना आपको जो बाबा ने कहा, बाबा ने कहा बच्चे मीठा बोलना है, कुछ भी हो जाए, बच्चे ग्लानी कोई भी करे, आपको खुश रहना, आपको मुस्कुरा, साक्षी होकर सुनना है, साक्षी होकर देखना है, आपको सब कुछ सहन करना है, आपकी चलन कैसी हो, आपने दैवी गुण धारण किए। आज बाबा ने क्वेश्चन पूछे ना, आज तीन क्वेश्चन थे जो धारणा के लिए मुख्य सार में भी आए। मैं कोई बाबा अपवित्र कर्म तो नहीं करता हूं, तो जो बाबा ने जो बातें बताई, बाबा मेरे से तो ये चिंता लगनी चाहिए कि बाबा मुझे तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, मैं तो कभी कड़वा बोल देता हूं, मीठा तो नहीं बोलता हूं हमेशा, चिंता लगे मैं कैसे मेरे मुंह से हमेशा मीठा निकले। चलन माना कर्म, मेरा कोई कर्म भी श्रीमत के बाहर ना हो, नहीं बाबा कभी कभी तो मेरे से तो हो जाता है गलत। तो ये चिंता लगे कि बाबा आप तो ये कहते हो मेरे अंदर तो अभी कमी है, कैसे ये गैप पूरा कैसे हो, ये चिंतन, ये मेरे जीवन में कैसे आए, नहीं आज से मैं ऐसे करूं, आज से ऐसे करूं, फिर आप चिंता लगाओ अपने अंदर, ये चलते फिरते लगन लग जाइए कि मुझे करना है। चिंतन के बाद मंथन, मंथन माना फिर क्या करते हैं, मंथन माना फिर उसको हम और गहराई से, चिंता लग गई फिर उसको मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूं, फिर आपका ध्यान क्या, जब चिंता लग जाएगी ना तो क्या होगा, चिंतन हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी बुद्धि तुरंत बाबा में लग जाएगी, फिर बाबा से पूछो बाबा मैं कैसे करूं, मेरी तो बहुत जिम्मेवारी है, घर पे ये है ये है ये, बाबा कहेगा अच्छा बच्चे सारी जिम्मेवारी मुझे दे दो, तो बात तुम निमित समझो अपने आपको। तो बाबा से जब हम ऐसे बात करते क्या होता है ऑटोमेटिक, तो बाबा से सोल्यूशन देता, बच्चे तुम्हारा ये है ना तुम ऐसे ऐसे कर लो, मक्खन निकाल के दे देगा। जैसे छोटा बच्चा कई बच्चे को काम देते ना वो कर नहीं पाता, तो हम क्या करते हम करके उसको दे देते, तू ऐसे बस कर ले बहुत सहज है, तो बाबा फिर कहता है तुम ऐसे ऐसे कर लो, ये मंथन है, मक्खन निकल गया। अब जो मक्खन निकला उसको सिमरण करो, सिमरण का मतलब क्या है, रिवाइज नहीं करो मन मन में, रिवाइज सिमरण का रिवाइज नहीं, फिर उसको कर्म में लाओ। बाबा को मैंने कहा बाबा मुझे तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, सामने वाला झूठ बोलता है मुझे गुस्सा आ जाता है, बाबा वो ऐसे करता तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मीठा तो नहीं, मैं तो मीठा नहीं बोल पाता हूं, तो बाबा क्या बोलेगा, बच्चे नहीं तुम जो वो बोले ना तुम साक्षी हो जाओ, तुम चुप रहना मत बोलना, है ना। तो मुझे जो बाबा ने मक्खन निकाल के दिया, जब गुस्सा आने का समय था तो बाबा ने मुझे मक्खन निकाल के दिया उस पॉइंट को ठीक करने का, चिंतन लगा पहले मंथन में, बाबा ने मुझे मक्खन निकल गया। और बाबा ने कहा मीठा माना क्या, मीठा माना, मैंने कहा बाबा मीठा क्या चीज होती है, मीठा रहो माना क्या मतलब, तो बाबा ने कहा बच्चे मीठा माना सत्व प्रधान स्थिति में रहो, सातों गुणों से देवता मीठे होते हैं ना, बाबा मीठा है ना, मीठा बाबा क्यों मीठा है, क्योंकि वो सातों गुणों का सागर है, ज्ञान स्वरूप, मतलब ज्ञान का सागर माना, ज्ञान स्वरूप माना समझ, ये समझ तुम्हें होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी शांत स्वरूप, मैं भी शांत स्वरूप हूं, किंतु अभी वो किसी विकार के वश होकर आपको गलत बोल रहा है, गलत बोल रही है, तो आप साक्षी होकर उसके पाठ को देखो, उस पर रहम आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये समझ आपको आ गई, या मैंने इसको गलत बोला हो, कभी गलत इसके साथ व्यवहार किया हो, इसलिए मुझे वापस कर रही है, ये कर रहा है। अब सिमरण में इसको कर्म में लाना, जो मक्खन मिला उसको कर्म में लाना, इसको कहते सिमरण। सिमरण का मतलब ये नहीं कि वो उसको बात को बार 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 इसको मन में रिवाइज करना, वो तो मनन माना रिवाइज, सिमरण माना उसको कर्म में, कर्म करते वो याद रहे, कर्म करते उस कर्म में आ जाए, उसे कहते सिमरण। मीठा माना सत्व प्रधान, अपनी जो अनादि स्थिति है सत्व प्रधान स्थिति और आदि देवता स्थिति सत्व प्रधान, उस स्वरूप में उस स्वरूप को याद करो कि मैं देवता था अब देवता बनने वाला हूं, तो फिर अपने आप मुख से मीठे बोल निकले, राइट। उस स्थिति में सत्व के बोलो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है। तो मनन चिंतन मंथन सिमरण, तो जब कर्म में लाएंगे तो क्या होगा, फिर वो यहां रिकॉर्ड होगा। कर्म रिकॉर्ड होते हैं, कर्म रिकॉर्ड होते हैं, जो आप सोचते हो वो रिकॉर्ड नहीं होता है। जब उसको कर्म में लाते हो तो रिकॉर्डिंग होती है, स्मृति स्वरूप है ना, तब आपकी स्मृति में आएगा। फिर जब दोबारा ऐसी परिस्थिति वापस आएगी आपके सामने को, आपको क्रोध करेगा, आपकी ग्लानी करेगा, तो आपको क्या होगा, वो रिकॉर्डिंग वो फाइल खुल जाएगी और आप फिर वैसे के वैसे दोबारा से वैसे ही कर्म कर, वैसे ही आप मुस्कुराते रहोगे और मुख से मीठा बोल निकलेगा, तो ये नया संस्कार बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही कैसे मुरली हमारे जीवन में आनी चाहिए। तो कौन से स्टेप हुए, श्रवण माना सुनना, दूसरा मनन, तीसरा चिंतन, चौथा मंथन, पांचवा सिमरण। सिमरण माना क्या, हा? जो मक्खन निकला उसको कर्म में लाओ, उसको खाओ ताकि खून बने। मक्खन निकाल के कटोरी में रखा रहे, कटोरी में देखते रहो मक्खन है ऐसे, उसे ताकत आएगी क्या नहीं, खाओ मतलब कर्म में लाओ। इसे कहते हैं सिमर, कर्म करते समय वो याद रहे कि मुझे ऐसा करना है, ये बाबा की डायरेक्शन है। बाबा ने मुझे सहज करके ये पॉइंट निकाल के दे दिया, या आपने खुद भी निकाल सकते हो। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाओ ना, बाबा के साथ कनेक्शन रहेगा तो ऑटोमेटिक आप भी निकाल पाओगे, बाबा के साथ कंबाइन बुद्धि हो जाएगी ना, तभी तो आप भी निकाल सकोगे, राइट। तब वो स्मृति में आएगा। तो रोज की मुरली क्या होती जाएगी, सफाई होती कि नहीं होती गई, दिल की सफाई बुद्धि की सफाई हुई कि नहीं हुई, मन की सफाई हुई ना, तो जो आप गलत रोज कर रहे थे वो क्या होगा, आज साफ हो गया नहीं हो गया। अब बाबा खुश होगा नहीं होगा बताओ, मुझे बताओ। आपने बाबा की मुरली सुनी, सुबह मुरली सुनी, फिर क्या हुआ, आपने बाबा की दर्शन क्या है, बच्चे जैसा मैंने कहा वैसा करो। बाबा ब्रह्मा बाबा क्या विशेषता थी, ब्रह्मा बाबा क्यों बने, नंबर वन क्यों बने बताओ, क्यों बने बताइए, क्योंकि शिव बाबा ने जो कहा ब्रह्मा बाबा ने उसी समय किया। शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, बच्चे ये दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली, ये दुनिया आने वाली है, तो बाबा ने क्या किया, सब कुछ तन मन समर्पण करके बाबा ने सब कुछ एकदम वो हो गया, बेहद की वैराग्यवृत्ति ले ली, 100% सब कुछ बाबा ने बाबा की श्रीमत पे लगा दिया, नहीं किया, किया कि नहीं किया। तो ये जो बाबा ने किया ऐसा प्रैक्टिकल किया, तुरंत किया, बाबा ने जो सुबह देखा तुरंत किया, सुबह बाबा ने बाबा आए, सबसे पहले बाबा ने सुना, ब्रह्मा बाबा ने सुना और तुरंत कर दिया। इसलिए बाबा को किसी ने पुरुषार्थ कर देखा नहीं कि बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा शुरू से फरिश्ता जैसे दिखते थे, नहीं। तो ये जो बाबा ने तुरंत किया, मम्मा ने क्या किया, मम्मा क्यों बनी, शिव बाबा का कहना मम्मा का करना, तुरंत उसी दिन करना, इसलिए मम्मा बाबा क्या बन गए, लक्ष्मी नारायण बन गए। हमें क्या बनना है, सीताराम बनना है कि राम सीता बनना है, तो हमें भी लक्ष्मी नारायण बनना, तो क्या करना पड़ेगा, जो ब्रह्मा बाबा ने, जो बाप दादा ने सुबह मुरली में कहा वो शाम, कम से कम चलो उसी समय ने किया तो शाम होते थे तो कर लो, रात होने से पहले तो काम पूरा, होमवर्क पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी तो हम सच्ची हमारी दिल बनेगी ना, तभी तो साफ दिल होगी ना, तब वो साहब राजी होगा ना, नहीं होगा। तो ये अमृत, तब हमारा अमृत वाला पावरफुल होगा ना, नहीं होगा। अब बाबा की श्रीमत जब मैंने देखो, मैंने देखा जीवन में कि जब हम सारा दिन अमृत, कई लोग कहते हैं हमारा अमृत वाला पावरफुल नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि सारा दिन तो हम श्रीमत की परवाह नहीं करते बाबा ने क्या कहा। फिर अमृत वेले उठते लड़ाई शुरू होती है। जो सारा दिन कर्म किया ना, सबसे पहले अमृत वेले वही संकल्प आता, जो सारा दिन गलत किया ना सुबह उठते ही वही संकल्प आएगा, फिर उससे हम लड़ाई करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, अंदर से आ रहा क्रोध स्वरूप आत्मा हूं, है ना, अंदर से आप बोल रहे शांत स्वरूप आत्मा हूं, नहीं अभी मन इधर जा रहा, अभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो वो 45 मिनट तो युद्ध करते करते बीत जाता है। वो विक्रम विनाश करने का समय था, बाबा की गोद में बैठने का समय था, वो कहां गया, युद्ध में गया नहीं गया। जो सारा दिन हम अटेंशन रखें इस बात का, सारा दिन बाबा ने क्या कहा, क्या मैंने किया, सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते ये अटेंशन रहे, तो तब जाके मेरी स्थिति कैसी बनेगी। तो ये जो है सबसे, तो अमृत वेला और मुरली, तीसरा फिर सारा दिन अटेंशन, तीसरी जो बात, तीसरा नियम अटेंशन, जो बाबा ने कहा मुझे वो करना है, उसके लिए बार बार मुरली को रिवाइज करना, जैसे बताया ना मनन चिंतन मंथन सारा दिन करते रहो। और फिर चौथा, सोने के पहले अपना पूरा पोता मेल देके, अपना हिसाब किताब देके बाबा को, और फिर अपना चार्ट भर के, फिर मुरली का 2-3 पॉइंट रिवाइज करके, फिर बाबा की याद में सोना। ये चार नियम सच्चे ब्राह्मणों के नियम। और चार मर्यादाएं कौन कौन सी हैं? पहली मर्यादा पवित्रता, अगर पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण नहीं। पवित्रता माना खाली मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क की पवित्रता नहीं, व्यर्थ संकल्प चलना भी अपवित्रता है। ये ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करती हैं, इसने ऐसा क्यों करते हैं, यज्ञ में होके भी ऐसे करते हैं क्या, वो ड्रामा में पार्ट है उस आत्मा का, एक्यूरेट पार्ट है। मैं अभी बाहर गया था किसी मेडिकल कॉलेज में, तो मेरे से एक प्रोफेसर ने पूछा पवित्रता क्या चीज है, पवित्रता का मतलब क्या है, पवित्रता का मतलब मैं आत्मा हूं और ये दूसरों को भी आत्मा देखना, आत्मा समझ के व्यवहार करना, एक्यूरेट वही समझ के व्यवहार करना, ड्रामा के पॉइंट को एक्यूरेट समझते हुए व्यवहार करना, चाहे वो मेरा पत्नी हो या पति हो या सास ससुर हो या बच्चा हो, उस पर जरा भी क्या क्यों कैसे ना करना, उस आत्मा का अपना पार्ट है। और उस पर साक्षी होकर देखना, ये है पवित्रता। वैसे संकल्प चलना भी है पवित्रता है। तो जितनी जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना मेरा अमृत वेला पावरफुल होगा, उतना मेरे अंदर मुरली अच्छे से रिकॉर्ड होगी, उतना मेरा मनन चिंतन मंथन सिमरन अच्छा होगा, ठीक है, उतना सारा दिन मेरा टेंशन रहेगा, उतना मैं सच्चाई से अपना लेटर लिखूंगा बाबा को सोने के पहले, उतना सच्चाई से मैं बाबा का चार्ट भरूंगा, उतना सच्चाई से मैं फिर बाबा की मुरली को पढ़ूंगा, और उतने सच्चाई से बाबा को याद करके बाबा की गोद में सूक्ष्मतम जाके सो जाऊंगा बाबा की गोद में, ठीक है। तो पहले फिर शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में बनाया और बाबा की याद में भोजन खाना, कौन सा भोजन, सात्विक भोजन, जिसमें फल हो, सब्जियां हो, अंकुरित हो, रोटी सब्जी हो, या जो भी आप डोसा इडली खाते हो ना, वो हो, चावल खाते हो चावल हो, है ना, पर बाबा की याद में, बाबा की याद में खाना। अगर आप फ्राइड खाते हो, पराठा पकौड़ा समोसा तला हुआ खाते ना, वो रास्तिक भोजन है, उससे आलस आएगा, अलबेलापन आएगा। और तामसिक भोजन, चाय कॉफी लसन प्याज बासी भोजन खाना, ये तामसिक भोजन, इससे आपको चिंता पैदा होगी, गुस्सा पैदा। अचार खाना, अचार खाते हैं ना, ये तामसिक भोजन उत्तेजना पैदा करेगा। नॉनवेज की तो बात ही नहीं है, ब्राह्मण तो नॉनवेज तो खाते ही नहीं। बाजार का खाना, बाजार में खाते ना, ये बिस्किट विस्किट, कोल्ड ड्रिंक पीना, कोको कोला पीना, ये कौन सी आती है, पेप्सी आती है, बहुत सारे आते हैं ड्रिंक्स आजकल आते हैं बहुत सारे, ये सब के सब तामसिक भोजन में आते हैं। इससे उत्तेजना पैदा होगी, आप कर रहे योग और अंदर से गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, इरिटेशन आएगी, कोई फायदा नहीं करने का, है ना। जितना शुद्ध सात्विक भोजन खाओ उतना अच्छा अमृत वेला होगा, उतना अच्छी मुरली होगी, उतना अच्छा टेंशन रहेगा, उतना सच्चाई से चार्ट लेटर लिख पाओगे, ठीक है। फिर सत्संग माना बाबा और मुरली का संग, सत्य का संग, सत्य माना कौन है, सत्य कौन है, एक सिर्फ एक बाबा है, बाकी सब झूठ है, और मुरली एक मुरली सत्य है, बाकी जितने भी मैगजीन्स किताबें और जितने भी स्वामी गुरु जितने भी है ना धरती पर, वो कोई भी सत्य है क्या? सत्य है वो? सत्य नहीं है, झूठ है। जो बाबा ने कहा सिर्फ वही करो और कुछ मत करो। और फिर चौथी बात, दैवी गुणों की धारणा। कभी भी आपको गुस्सा करने की आदत है, जल्दी करने की आदत, चिंता करने की आदत है, वो कभी मत करो, क्योंकि एक बार गुस्सा किया तो तीन दिन तक आपका योग नहीं लगेगा। एक बार मूड ऑफ कर ले, उदास हो गए ना, एक बार सिर्फ हो गए तो पांच दिन तक वैसा योग दोबारा नहीं लगेगा, भले कितनी बार मुरली पढ़ते रहो। अंदर बुद्धि मुरली में बैठेगी, मुरली अंदर बुद्धि में बैठेगी नहीं, आपसे रिकॉर्ड नहीं होगी, समझ रहे? अगर किसी के प्रति शत्रुता भाव अंदर रख लिया, जब तक उसको माफ नहीं कर दोगे तब तक वो आपके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, योग वैसा लगेगा नहीं। दैवी गुणों की धारणा माना सरलता, नम्रता, उदारता, दूसरों को माफ कर दो, मीठा बोलो, मधुरता, धीरज रखो, हर बात में धीरेता रखो। सहनशीलता रखो, सहन करके ठंडे रहो। कई लोग सहन करते हैं, गर्म होते रहते हैं अंदर अंदर, फिर बोलते हैं मैंने इतना सहन किया, बात मत पूछो, फिर सिर में दर्द हो जाता है, नींद आनी बंद हो जाती है। सहन करके भी ठंडे रहो, शील माने ठंडा, अपनी बुद्धि को गंदा मत करो, नहीं तो सहन करके लोग बुद्धि को गंदा कर लेते हैं। शील माना पवित्र, शुद्ध, दृढ़ता, मुझे बाबा ने जो कहा मुझे वो करना ही है, लोकलाज की परवाह नहीं करनी, मुझे जो बाबा ने कहा मुझे वो करना है, राइट। संतुष्टता और हर्षित मुक्ता, मुस्कुराते रहो, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, वो की गहराई फिर लगे। तो मैंने सोचा आज मैं आपको सिर्फ बेसिक बातें बता दूं, सच्ची दिल, हालांकि टॉपिक अलग है सच्ची दिल साफ दिल का, कि तो सच्ची दिल साफ दिल क्या है, उसको बनाने के लिए चार नियम और चार मर्यादाएं। मैं सोचा था मैं सच्ची दिल साफ दिल का मतलब समझाऊंगा आपको, फिर मैंने कहा सच्ची दिल साफ दिल ऑटोमेटिक इससे बन जाएगी, जो चार नियम चार मर्यादाओं को फॉलो करेंगे। सच्ची दिल माना वो दिल जिसमें कोई भी दूसरा, एक बाप के साथ दूसरा कोई ना हो, कोई देहधारी ना हो, जिसमें अगर किसी देहधारी की याद है तो सच्ची दिल नहीं है, अपनी देह की या किसी और की देहधारी की, किसी की, बच्चे की, किसी की भी, माँ बाप की, भाई बहनों की, किसी की भी याद है, देह के संबंधों की याद है, देह के स्वभाव संस्कार की याद है, ये देह का स्वभाव है, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह का स्वभाव, आलस, अलबेलापन, देखा संस्कार, आदत है, चिंता करना, डर लगना, ये सब, ईर्ष्या करना, जल्दीबाजी करना, ये देह की आदत है, संस्कार है। और देह के पदार्थ, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति अगर आपको याद है तो ये जो चार चीजें हैं, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, ये चारों चीजें अगर बुद्धि में किसी की है, दिल में है, तो सच्ची दिल नहीं है। सच्ची दिल माना जिसमें सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई, जिसके दिल में दिलाराम समाया हुआ है। दिलाराम माना कौन? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, ये है सच्चा बाप। जिसके दिल में ये सच्चा बाप समाया हुआ है वो है सच्ची दिल। ठीक है ना, सच्चे बाप से सच्चे रहो। सच्चे रहो का मतलब क्या है? सच्चे रहना माना अपना, हमारा अनादि स्वरूप, परम धाम वाला स्वरूप, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, शिव बाबा और मैं चमकता सितारा बाबा के साथ, बाबा ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियों का सागर, मैं भी मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियों का सागर, वो स्थिति, वो अनादि स्वरूप, ये मेरा सच्चा स्वरूप है। और आदि स्वरूप, देवता स्वरूप, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, लाइट का ताज, रतन जड़ित ताज, पावन सतो प्रधान स्वरूप, ये मेरा सच्चा 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 मतलब स्वरूप है। तो ये है सच्चे बाप से सच्चा रहना। ये जो मेरा मध्य में स्वरूप आया, कलयुग का स्वरूप, सच्चा स्वरूप नहीं है, सत्य स्वरूप है, रावण का स्वरूप है। अगर मैं इस स्वरूप में रहता तो आप बाप के साथ सच्चा नहीं हूं, बाप से झूठा हूं। तो सच्चे बाप के साथ सच्चा रहो, इसका यह मतलब है, राइट। और सच्चाई का चार्ट रखो, इसका चार्ट रखो कि मैं कितनी देर ऐसा रहा, बाप के साथ इस स्वरूप में अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप में रहा। तो ये सच्चाई का चार्ट रखो, इतनी कितनी देर मेरी स्थिति अनादि स्वरूप की रही, मतलब परम धाम की स्थिति रही, और कितनी देर मेरी स्थिति कैसी रही, देवता स्वरूप की रही या फरिश्ता स्वरूप की रही, ये मेरा सच्चा मतलब स्वरूप है, राइट। तो जितना दिल में सच्ची दिल में ये चीज रहेगी, उतना हमारी सच्ची दिल ऑटोमेटिक, जब बाप दिल में आ गया तो क्या होगा, साफ दिल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ऑटोमेटिक। जो भी हमारी पुरानी आदतें हैं, जो भी हमारे पिछले जन्मों के विकार हैं, विकर्म हैं, वो धीरे धीरे हम बार बार हमारी स्थिति कहां जाएगी, परम धाम में जाएगी। सच्ची याद क्या है, सच्ची याद है अपने को निराकार आत्मा समझ के निराकार बाप को याद करते रहे, निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप को निराकारी घर में याद करना, ये है यथार्थ याद, सच्ची याद, जिससे विक्रम विनाश होते हैं। हमेशा परम धाम में ही विक्रम विनाश होते हैं, सूक्ष्म धाम में विक्रम विनाश नहीं होते। उसके लिए सारा दिन मेरी स्थिति ऐसी, सच्ची दिल साफ दिल होने पर हमें क्या मिलता है, एक तरह वीजा मिल जाता है, वीजा समझते हैं, दूसरे देश में जाना तो क्या चाहिए, वीजा चाहिए ना, तो हमें वीजा मिल जाता है किसमें जाने का, सूक्ष्म वतन में जाने का और परम धाम में जाने का। जब चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे हम सूक्ष्म वतन में जा बाबा की गोद में जाके बैठ सकते हैं, और जब चाहे परम धाम में जाके बैठ सकते हैं। इसलिए कहते हैं साबराजी, है ना, तो साबराजी माना कहीं भी कोई ब्लॉक नहीं है, कहीं भी कोई हमें को रोकने वाला नहीं, नहीं तो क्या होता है, बैठे हैं यहां पर और कोशिश करें सूक्ष्म वतन में जाने की, बहुत कोशिश करके सूक्ष्म वतन में ऐसे पहुंचे बाबा, जैसे बाबा का लगा के बाबा के पास पहुंच गए और एक सेकंड नीचे आ गए, बस ये कहे मैं आज बहुत अच्छा योग लग गया हमारा, ये कोई याद है कि ये कोई स्थिति है क्या, नहीं, बाबा की गोद में जाके बैठ जाओ, बात करो बाबा से, बाबा प्यार कर रहा है, सिर पे हाथ फेरा, बच्चे कैसे हो, एक एक बात बाबा से करो, घर की डायरेक्शन लो, अपने पुरुषार्थ की डायरेक्शन लो, ठीक है, समझे सच्ची दिल साफ दिल क्या है, फिर सच्चा दिल पे साहब राजी होगा। चलिए आज मैंने वैसे बहुत गहराई में नहीं किया, फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको मोटी मोटी बातें, है ना, क्योंकि अभी तो आपका सीजन शुरू नहीं हुआ, तो बहुत ही बेसिक बातें हमसे, हमने आपसे डिस्कस की इस बात में, तो मैं चाहूंगा कि हम सभी भाई बहने कभी भी अमृत वेला मिस ना करें, और पावरफुल अमृत वेला होना चाहिए। पावरफुल अमृत किसका होगा, जो सारा दिन बाबा की श्रीमत पे चलेगा, कभी मुरली भी बाबा की गोद में बैठ के सारा दिन उसका अभ्यास करें 6 स्टेप में, और फिर सोने के पहले लेटर, चार्ट और मुरली का 2-3 पॉइंट रिवाइज करके फिर बाबा की गोद में सोना, और फिर पवित्रता, शुदन और सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, 4 मर्यादाएं पक्की करें, तो ऑटोमेटिक हमारी स्थिति पावरफुल हो जाएगी। चलिए 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं।